जीवन एक गोरख धंधा है। ऑडिबल की विशेष प्रस्तुति ओम स्वामी के विचार, ओम स्वामी की आवाज में। नहीं है तू तो फिर इनकार कैसा, नफी भी तेरे होने का पता है। मैं जिसको कह रहा हूं अपनी हस्ती, अगर वो तू नहीं तो और क्या है। नहीं आया ख्यालों में अगर तू, तो फिर मैं कैसे समझा तू खुदा है। आप ही अपना पर्दा हो, तुम एक गोरख धंधा हो।
हम दशम प्रकरण दसवीं कड़ी में पहुंच गए हैं। हमने पिछले प्रकरण में जाना कि समर्पण और सत्संग क्यों नितांत आवश्यक है मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के लिए। जब हम सत्संग और समर्पण से चलते हैं तो हमारे भीतर एक चीज उत्पन्न होती है जिसको कि शास्त्रों ने एक विशेष संज्ञा दी है। अब तक की सारी युक्ति रही आध्यात्मिक उन्नति की, अब तक की सारी युक्ति रही दुख से बाहर आने की। सत्संग और समर्पण से जो प्राप्त होता है उसको एक शब्द प्रयोग किया गया है हमारे उपनिषदों में, वेदों में भी। कहते हैं रामकृष्ण परमहंस के पास एक साधु आए एक बार, और इतनी बड़ी उनके पास इतनी चौड़ी पोथी थी, कई सारी पोथियां थी, कम से कम 15 किलो उनका वजन रहा होगा। वो सारा दिन उसी का अध्ययन करते थे। दक्षिणेश्वर काली मंदिर में साधुओं के रहने की व्यवस्था होती थी, तो बहुत साधुओं को आना जाना होता था, साधु संतों का। तो वो सारा दिन उसका अध्ययन करते, केवल भोजन के समय आते, उसके बाद फिर अध्ययन, फिर वही मनन चिंतन उस अपने शास्त्रों पर। तो रामकृष्ण परमहंस को बहुत अच्छे लगे ये साधु कि वास्तव में ये व्यक्ति साधु है, ना इधर का बोलना ना उधर का सुनना, ना किससे ज्यादा बातचीत, अपना अध्ययन हरिचिंतन में ये रत है। ये वास्तव में एक साधु का लक्षण है। जब 15 दिन बीत गए, वो साधु वहीं के वहीं रहे, तो रामकृष्ण से रुका ना गया, ठहरा ना गया। उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा सा देख सकता हूं आपके शास्त्रों को, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, ना ही मैं शास्त्र अध्ययन करता हूं, परंतु मन में बहुत तीव्र इच्छा हो रही है कि आपकी पोथियों को देखूं, खोलकर देखूं कौन सी भाषा में क्या लिख रखा है। तो साधु ने कहा अवश्य अवश्य, कोई आपत्ति नहीं मुझे, बेशक। दोपहर को भोजन के उपरांत ही मैं आपके पास सारी पोथियां लेकर आ जाऊंगा। वो ले आते हैं सारी पोथियां। रामकृष्ण परमहंस उत्सुकता से जब एक एक पोथी को खोलते हैं, किसी भी किताब में, इतनी भारी वो किताबें थीं, कोई शास्त्र कोई वेद कुछ नहीं, सिर्फ एक राम का नाम लिखा होता है और कुछ नहीं। हर किताब के हर पन्ने के हर पंक्ति के ऊपर एक बस एक राम नाम की पंक्ति, राम 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 राम, बस और कुछ नहीं होता, उसके अतिरिक्त कुछ और नहीं लिखा होता। तो रामकृष्ण ने कहा ये महाराज समझा नहीं, मैं तो सोच रहा था आप रोज किसी चीज का अध्ययन करते हैं। उनका हां अध्ययन करता हूं, बस इसी का अध्ययन करता हूं, क्योंकि समस्त वेद उपनिषद समस्त शास्त्र समस्त धर्मों के ग्रंथ क्या कहते हैं, यही ना कि उस नाम में रम जाओ, वही कर रहा। उन्होंने मुझे यहीं तक तो लेके आना है। तो मैंने सोचा उन सबको पढ़ के क्या करूँगा, जब उसका उत्तर ही यही है तो फिर यही सही। सगुन ध्यान रुचि सरस नहीं, निर्गुण मन ते दूर। तुलसी सिमरहु राम को नाम सजीवन मूर। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि सगुन में मेरा ध्यान लगता नहीं, विग्रह देखूं मूर्ति देखूं मेरा ध्यान लगता नहीं, और निर्गुण मुझे बहुत दूर प्रतीत होता है। निर्गुण पे मेरा मन जो है टिकता नहीं, सगुन में मेरी रुचि नहीं लग रही, निर्गुण पे मेरा मन नहीं टिक रहा, तो मेरे लिए तो सरस जो है, जो रस से भरा हुआ है, वो भगवान का नाम ही बहुत है। अपने आप को मूड कह रहे हैं, सजीवन मूड, मैं मूड हूं, इसलिए मेरे लिए राम का नाम ही पर्याप्त है, क्योंकि अंत में तो मैंने वहीं पहुंचना है। तो शास्त्रों में वो शब्द है प्रज्ञा। प्रज्ञा अर्थात ऐसा ज्ञान जो भीतर से उत्पन्न हो, जिससे आपको एक समझ आ जाती है। एक बार मैं एक बड़े अच्छे संत से मिला, ऋषिकेश की बात है, तो उनका बहुत मन था कि मैं उनके पास रह जाऊं। एक गंगा जी के किनारे उनका छोटा सा आश्रम था, अकेले वो रहते थे, वृद्ध थे। तो उन्होंने कहा कि जो भी कल्पना आपको हिमालय में जाकर करनी है, ध्यान कल्पना ही तो है ना, एक वही कल्पना आप यहां पर बैठकर भी कर सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे तो, मैंने साधना के लिए घर छोड़ा है, एक बार मुझे आर्या पार होना है, फिर मैं कुछ भी कर लूंगा। तो उन्होंने कहा, देखो बेटा, जब प्राप्ति होती है ना, तो ऐसा नहीं कि मनुष्य के चार भुजाएं लग जाती हैं, ऐसा नहीं कि उसका शरीर मनुष्य का नहीं रह जाएगा, बस एक प्रज्ञा जागृत हो जाती है, एक समझ आ जाती है। अच्छा, अब मैं समझा। वो समझ यहां से नहीं, मस्तिष्क से नहीं, दिमाग से नहीं, भीतर से जागृत होती है, और जो समझ भीतर से जागृत हो वो ज्ञान होता है। और भगवान कृष्ण ने बोला है भगवद गीता में, अर्जुन समस्त जाति धर्म की बात छोड़ो, केवल दो ही प्रकार के लोग होते हैं समस्त इस विश्व में, 14 भुवनों में, 7 लोकों में केवल दो ही प्रकार के लोग हैं, एक आसुरी, एक जो दैवी प्रकृति के लोग हैं। मनुष्य की प्रकृति से वो बनता है, कर्माणि प्रविवक्तानि स्वभाव प्रवहर गुणे, अपने कर्मों से उसकी जाति है। ब्राह्मण वाले कर्म कर रहा है तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय वाले कर्म कर रहा है तो क्षत्रिय है, परंतु प्रकृति के आधार पर केवल दो ही प्रकार के होते हैं। और बहुत सुंदर है, द्वाभूत सर्गो लोके अस्मिन देव आसुरेव च, देवो विस्तृशः प्रोक्तम आश्रम पार्थ मेश्रण, के समस्त पृथ्वी पर दो ही प्रकार के लोग हैं, एक आसुरी एक दैवी। देवो विस्तृशः प्रोक्त, देवताओं के बारे में तो मैंने विस्तार से बता दिया है, जितने भी गुण अब तक बताए हैं आपको, सत्संग समर्पण सरल व्यवहार सरल जीवन या चरित्र का बल ये, या सृजनात्मक कार्य करना, ये दैवी संपदा की बातें हैं। ये वो व्यक्ति करता है जिसके हृदय में एक देवता जागृत हो चुका है, ये वो व्यक्ति करता है जो आत्मीयता से आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ रहा है। तो भगवान ने भी कुछ ऐसे ही कहा, देवो विस्तृशः प्रोक्त, उनके बारे में विस्तार से बता दिया है, कौनते आश्रम पार्थ में श्रृणु। अब आसुरी प्रवृत्ति के बारे में बताता हूं, कैसा होता है आसुरी प्रवृत्ति या प्रकृति का विचार का व्यक्ति। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जानना विदुरासरा, न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। कौनते, चाहे वो व्यक्ति प्रवृत्ति मार्ग में हो अर्थात संसार के कार्यों में रत हो, चाहे वो निवृत्ति मार्ग में हो अर्थात सब कुछ त्याग चुका हो, परंतु फिर भी उसको एक मूल आचरण की समझ नहीं आती। इतना ज्ञान नहीं उसको होता कि मुझे किस समय कैसी बात करनी है, किस ढंग से करनी है, किससे करनी है, कितनी करनी है, कब करनी है। उसके आचरण में वो कमियां जो पहले विद्यमान थी सदा सदा के लिए विद्यमान रहती हैं। ना शौचम ना चपी, ना चपी चाचारो, ना पी चाचारो, ना वो शुद्धता का ध्यान रखता है ना ही आचरण का ध्यान रखता है, और न सत्यम तेषु विद्यते, असत्य भाषी होता है, सत्य में वो स्थित नहीं हो पाता। निरंतर उसके मुख से निकलने वाला हर दूसरा जो वाक्य है वो झूठा ही होता है लगभग। जिसको झूठ बोलने में रस आना शुरू हो जाए उस व्यक्ति को सच के पथ पर कोई नहीं ला सकता। जो अपने जीवन का सुख असत्य में पा जाए एक बार, उसको कोई व्यक्ति सत्य के पथ पर नहीं ला सकता, क्योंकि उसको एक असत्य भाषा भाषी होने से एक अपार सुख मिल रहा है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता, अहंकार क्रोध और एक अभिमान दर्पम, उसी में किसी भी परिस्थिति से जब उस व्यक्ति को जूझना हो इनका आश्रय लेता है वो, च संश्रिता। किसी को जोर से चुप करा दिया तो किसी को अहंकार से चुप करा दिया। ये आसुरी प्रवृत्ति के मनुष्य की पहचान होती है। यदि आप दुर्योधन को असुर समझते थे, या दुशासन को असुर समझते थे, या रावण को असुर समझते थे, या हिरण्यकश्यप को असुर समझते थे, तो यदि आप में ये गुण पाए जाते हैं तो आप भी आसुरी प्रवृत्ति के ही हैं। और क्या पहचान है ना, यही तो पहचान है। कहते हैं मुल्ला नसरुद्दीन के चाचा की मौत हो गई और उसके दोस्त ने पूछा, तुम्हारे चाचा की मौत कल हुई मैंने सुना। उसने कहा हाँ कल शाम को वो चल बसे। तो होशोवास में गए वो या क्या अवस्था थी? कहता भाई वो तो जब वसीयतनामा खुलेगा तभी पता चलेगा, मेरे मतलब का हुआ तो होशोहवास में थे, नहीं तो मैं कचहरी में जाकर केस लगाऊंगा कि उनसे जबरदस्ती हस्ताक्षर ले लिया गया। कोई भी जब तब ध्यान हो, जब वसीयतनामा खुलेगा आपका तब पता चलेगा ना कि होशोहवास में किया है उसको या बेहोश होकर किया है, और तो कोई रास्ता है नहीं। अगर मैं बोलूं मैं बहुत ज्ञानी हूं, मेरे कर्म से ही आप जानेंगे ना कि हाँ ये व्यक्ति प्रज्ञावान व्यक्ति की भांति व्यवहार कर रहा है। नहीं तो मैं लाख कहता रहूं मैं ज्ञानी हूं, यदि मेरा व्यवहार वैसा ना हो तो आप बोलेंगे ये ढोंगी है। तो लाख सत्संग हुआ हो, लाख समर्पण हुआ हो, लाख जप हुआ हो, लाख ध्यान हुआ हो, यदि एक मूल समझ नहीं आई इतनी सी कि मेरा आचरण कैसा होना चाहिए, मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए, मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, तो फिर क्या कमाया? अब तक के लिए मान लीजिए जीवन में आपने 20, 30, 40 वर्ष एक आध्यात्मिक पथ को दिए हैं। हो सकता है दिन में दो दो घंटे ना दिए हों, 20 ही मिनट दिए हों, 10 ही मिनट दिए हों। मैं आपसे ये पूछता हूं कि क्या कमाया? क्योंकि जो प्रज्ञावान व्यक्ति होता है, जो स्थित प्रज्ञ होता है, वो एक बात पर चिंतन करना जानता है। उसमें इतनी क्षमता होती है कि वो सब विक्षिप्तता से दूर होके यदा संहृत चायम कूर्मंगनीव सर्वश इंद्रियाणी इंद्रियास्ते प्रज्ञस्तज्ञा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। कि जो चारों ओर से कछुए की भांति अपने अंगों को समेट कर कौनते अंतर्मुखी हो सके वही प्रज्ञावान है, वही स्थित प्रज्ञ है। कभी अपने से यह प्रश्न जरूर करना कि मैंने कमाया क्या है अब तक। यदि मैंने जप किया, ध्यान किया, जिस प्रयोजन से किया, क्या वो प्रयोजन सिद्ध हुआ या नहीं? क्या मैं आज एक बेहतर मनुष्य हूं या नहीं? आज जीवन में पहले से बढ़कर हूं या नहीं? नहीं तो खर्चते ही रहे, जमा तो फिर कुछ भी ना किया, नहीं तो फिर ये एकमात्र एक सामाजिक उत्सव बनकर रह गया। कितने धर्म के कार्य होते हैं आपने देखा होगा, सामाजिक उत्सव मात्र रह जाते हैं। खाओ पियो, जोर जोर से बात करो, निंदा इत्यादि पर निंदा, चुगली एक दूसरे के ऊपर, टिक्का टिप्पणी करते रहो, फिर चले जाओ घर। और हमारे देश में तो ये विशेषता होता है। सबसे मजे की बात है, हमको सीखने की जरूरत नहीं, लेकर ही पैदा होते हैं हम। धर्म के स्थल पर भी हम एक दूसरे से पूछते हैं, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, घर में कौन कौन है, क्या डाला है, साड़ी कहाँ से ली, सूट कहाँ से लिया, जो भी होता है कि पतले हो गए, मोटे हो गए, ये तो इस देश की बीमारी है, आपने देखा होगा। यदि आप 100 ग्राम भी ज़्यादा वेट आपका हो गया है वजन, 100 लोग आपसे आकर बोलेंगे, अरे भी मोटे हो गए, वे तुम्हें क्या, तुम्हारी रोटी खाई, आप इतनी मेहनत करके पतले हो रहे हैं, 100 लोग आपके बोलेंगे कमजोर हो गए। तो ये तो आप आशा मत रखो इस समाज से कि आपको जीने देगा। और ऐसे ही अधिकतर सत्संग होता है, और ऐसे सत्संग का कोई लाभ नहीं है, ऐसे सत्संग से प्रज्ञा ना प्राप्त होगी। यदि प्रज्ञावान बनना है तो मनुष्य में इतना साहस होना चाहिए कि वो स्वयं की ओर देखकर बोल सके, मुझ में ये कमी है, मैं इस कमी पर कार्य करूंगा। यदि किसी को क्रोध आता है, कारण कुछ भी हो, यदि आता है तो वो कमी है। उस पर यदि मुझे क्रोध आता है तो मुझे ही कार्य करना होगा, दूसरे से कितनी का आशा रख सकें। कोई किसी को दुखी नहीं करना चाहता, ना ही कोई किसी से दुखी होता है, यह हमारे ही मन की अवस्था होती है। एक पति घर आता है शाम को, बेचारा थका मारा, और पत्नी रोना शुरू कर देती है। आज क्या हुआ, उसने कहा, क्यों रो रही हो? तुम्हारी माँ मुझे चैन से बैठने नहीं देती, निरंतर मुझे ताने, बेइज्जती मेरी। उसने कहा, क्या वाहियात बात कर रही हो, तुम यहाँ बैठी हो कलकत्ता, मेरी माँ वहाँ बैठी है कश्मीर में, फोन हमारे घर में है नहीं, दूर से तुम्हें कहाँ से तंग कर दिया उसने? उसने बोला, ये देख लो, पत्र आया है तुम्हारे नाम। उसने कहा, तो क्या लिख दिया इसमें? सारा पत्र तुम्हारे नाम है, तुम्हारे लिए लिखा है, अंत में नीचे लिख दिया, बहू ये मेरे बेटे को दे देना याद से। कितनी मेरी बेइज्जती की, मैं तुम्हारे क्या पत्र खोलती फिरती, मैं तुम्हारी चिट्ठी खोल के पढ़ूंगी? पर तुम्हारी माँ ने सोच लिया मैं तुम्हारी चिट्ठी पढ़ूंगी, इसलिए नीचे लिख दिया कि मेरे बेटे को दे देना चिट्ठी को। तो उसने कहा, पर तुम वही तो कर रही हो, मेरे नाम पे जो चिट्ठी आई है वो खोलकर पढ़ रही हो, पर उसको तो नहीं पता ना, मेरी सास को तो नहीं पता, तुम्हारी माँ को तो नहीं पता, उसने पहले ही क्यों लिख दिया, ये मेरी बेइज्जती ही तो है। उसने कहा, जो भीतर से कमजोर होता है उसको सबकी बात दुखती है, जो भीतर से कमजोर होता है उसको अच्छी बात भी बड़ा सोच विचार के बोलना पड़ता है, ना जाने वो कैसे लेगा उस व्यक्ति उस बात को। शायद आपको जीवन में ऐसे व्यक्ति मिले होंगे, मैं नहीं जानता, ईश्वर कृपा से मुझे तो नहीं मिले। क्योंकि ये नहीं, वो कमजोर इसलिए है कि उसमें बल नहीं, ये नहीं वो व्यक्ति इसलिए रो रहा है कि वो सक्षम नहीं है, वो क्षमतावान नहीं है, आत्मवान नहीं है, इसलिए नहीं, केवल इसलिए उसको अपने बल की अभी अनुभूति नहीं हुई है, केवल इसलिए कि उसने अभी स्वयं पर विश्वास करना नहीं सीखा है। और प्रज्ञा के पैदा होने का पहला लक्षण ही यही होता है, आपको स्वयं पर विश्वास हो जाता है, आप समझ जाते हो कि मैं जीवन में कुछ कर सकता हूं। वो बल जो मिलता है वो केवल और केवल इस आंतरिक समझ से मिलता है जिसको कि संज्ञा दी गई है प्रज्ञा की। यदि समर्पण हो गया, सत्संग हो गया, और सत्संग से प्रज्ञा आ गई, तो बस ताकि मनुष्य हवा में ना उड़े ज्यादा और सम रहे दुख में, सुख में, विकट परिस्थिति में और प्रियकर में। भगवान राम को जब वनवास हुआ तो लिखा गया है कि उनके मन में और उनके उनके वचन में, उस समय उनके कर्म में, उनके समस्त क्रियाकलाप में ना शोक था किसी प्रकार का, ना विषाद। जब राज्याभिषेक हुआ, जब उद्घोषणा हुई उसकी, तो चेहरा था उस पर मात्र एक मंद मंद मुस्कान थी, कुछ ऐसा नहीं कहा कि जय माता दी, चलो भाई कल से मैं राजा बन रहा हूं। प्रज्ञा जब स्थिर हो जाए, सम हो जाए, तो मनुष्य स्थित प्रज्ञ हो जाता है, और स्थित प्रज्ञता से बढ़कर कोई बड़ी प्राप्ति नहीं है, कोई नहीं। विष्णु विष्णु इसलिए हैं, स्थित प्रज्ञ हैं, शिव शिव इसलिए हैं, स्थित प्रज्ञ हैं। बस फिर एक ही चीज बचती है जिसको धारण करने से मनुष्य समता का जीवन व्यतीत कर सकता है। एक छोटा सा प्रसंग है, मैंने पहले भी शायद आपके साथ साझा किया हुआ है। हमारे भारत देश से एक मंदिर का पुजारी, प्रसिद्ध मंदिर का पुजारी, इटली जाता है, वेटिकन सिटी। वहां पर उसकी एक मीटिंग होती है पोप के साथ। कैथोलिक चर्च का पोप सबसे शक्तिशाली, सबसे बड़ा धर्माधिकारी है, तो वो उसने गमछा लिया होता है, धोती डाली होती है, जनेऊ धारण किया होता है, और जा रहा है। और जब वहां बाहर पहुंचता है तो बहुत सारे दरबान वहां होते हैं, और उनके बहुत सारे लोग, इतने सब बढ़िया बढ़िया कपड़ों में सजे दजे, एकदम चमचम करते फर्श, और इतनी बड़ी बड़ी सीलिंग और ऊंची वो छत। उसको लगता है मैं तो ना जाने किस स्वर्ग में आ गया, किस महल में आ गया। तो एक एक करके वो उसको आते हैं, उसका अभिनंदन करते हैं और पोप की ओर लेके जाते हैं। महल में चलते ही 20-25 मिनट हो जाते हैं, महल ही खत्म होने को नहीं आता। इतना विशाल का एक कमरा जहां पर उसको लेके जाया जाता है, और उसके जीवन में उससे बड़ा टेबल उसने कभी ना देखा था, इतना बड़ा टेबल, एकदम चमक रहा। और एकदम सुंदर सा पोप आकर सामने उसके बैठ जाता है, उसको चाय पानी पूछा जाता है, फिर उसको बोलते हैं कि कैसे हैं आप, बहुत अच्छा लगा आप आए। तो पोप के टेबल पर एक फोन पड़ा होता है, पुजारी कहता है कि क्षमा करें, मन में एक प्रश्न थोड़ा सा उत्पन्न हो गया है। क्या? पोप ने कहा, भैया आप इतने बड़े धर्माधिकारी, आपको फोन की क्या जरूरत है, आसपास कई सौ लोग घूम रहे हैं, आपका हर मुख से वचन निकले और ये पूरा करने को तैयार हैं। देखकर लग ही रहा है धन संपदा की कोई कमी नहीं है, आप खुद फोन करते हैं, समझ नहीं आया कुछ। तो पोप ने कहा, अरे ये कोई साधारण फोन नहीं है, ये हॉटलाइन है मेरी भगवान के साथ। यहां से उठाओ तो सीधा भगवान को नंबर लगता है, गॉड को। कि बार जब मैं बहुत परेशान होता हूं तो मैं यहां से बात करता हूं। उसने कहा कि मैं भी कर सकता हूं, इतनी दूर आया हूं, इतनी लंबी यात्रा थी, थोड़ा थका हूं, भगवान से हमारी बात भी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। पोप ने कहा अवश्य लीजिए। फोन उठाता है, उधर से आवाज आती है, हेलो। तो पुजारी बोलता है, जय श्री हरि। तो भगवान ने कहा, हाँ बोल रहा हूँ, कैसे हो? बस ठीक है प्रभु, आपकी कृपा है, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं। आप जब देख ही रहे हैं तो कैसी समस्या कैसी परेशानी, सब अच्छा है। तो भगवान ने कहा, याद किया मुझे, बस आपको प्रणाम करना था, नतमस्तक होना था, अपनी भक्ति प्रकट करनी थी और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। आपको ऐसे ही कष्ट दिया उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और वो फ़ोन रख देता है। इतने में नीचे से एक आवाज़ आती है जैसे कुछ प्रिंट हो रहा है। तो पोप से उसने पूछा, ये क्या है? उसने कहा, ये बिल है। अच्छा, कितना बना है? उसने कहा, आपका बिल बन गया $120। तो फटाफट उसको गणना करने में लगता है कि भारतीय करेंसी में ये तो लगभग 8,500 रुपये बन गया। उसने कहा, भाई भगवान को कॉल लगी है, इतना तो बनेगा ही, भगवान इतना स्वर्ग से भी पार रहते हैं, वो इतनी दूर आपकी कॉल लगी है, इतना तो बनेगा ही। अगर नहीं आपके पास कोई बात नहीं, उधार हम दे देंगे, आप बाद में दे देना। कहा, नहीं नहीं है मेरे पास, ले लीजिए। वो ऐसे करके दे देता है और कहता है कि कभी आप भी हमारे भारत देश में पधारिएगा, वाराणसी में आइएगा कभी, हम भी आपका अभिनंदन करना चाहेंगे। पोप ने कहा, ठीक है, कभी मैं निकला उस तरफ तो ज़रूर आ जाऊँगा। 2 साल के बाद संदेश आता है कि पोप आ रहा है। और जैसे ही पोप आता है तो देखता है कि अरे छोटा सा मंदिर, वो लकड़ी का छोटा सा दरवाज़ा, उसमें से घुस के जाना है, एक बड़ा सरल सा एक टेबल लगा हुआ है, बहुत सारी भगवान की फ़ोटोएं टंगी हुई हैं, एक दीपक जल रहा है, अगरबत्ती जल रही है, नीचे सरल सा एक फर्श है जिसमें ईंटें लगी हुई हैं, और 2 ही कुर्सियाँ, एक पे पुजारी एक पे पोप, आकर बैठ जाता है। बड़ा वो कहता है कि मतलब ये तो बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, मैंने सोचा था कुछ तो वैभव होगा यहाँ पर। उसने कहा, महाराज हमारा तो ऐसे ही है, जैसे श्री हरि, जैसे भगवान विश्वनाथ रखे हैं वैसे ही ठीक है। तो देखता है कि उसके वहाँ भी फोन पड़ा है पुजारी के। उसने कहा कि आप के यहाँ फोन कैसे, मतलब आप चाय पानी मंगाने के लिए? नहीं नहीं हमारी भी भगवान से बातचीत है, ऐसी बात नहीं, ये हमारा भी हॉटलाइन है, फोन उठाओ सीधा भगवान उठाते हैं उधर से। उसने कहा, मैं बहुत लंबे वर्ल्ड टूर से आ रहा हूँ, मुझे बड़ी एक तीव्र अंदर से इच्छा है कि मैं भगवान से बात करूँ, इतना मैं दुखी हूँ, इतना मैंने कष्ट देखा जगह जगह, मुझे बस बात करवा दो। जी कीजिए महाराज, उन्होंने फ़ोन उठा के पकड़ा दिया। उधर से आवाज़ आती है, जय श्री हरि। तो पोप कहता है कि हेलो, एंड पोप कहता है, गॉड बहुत प्रॉब्लम चल रही है, कहीं बच्चे बीमार हैं, कहीं भूखे हैं, कहीं लोग मर रहे हैं, कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं पानी नहीं पीने को, मेरे तो सांस लेना मुश्किल हो गया है, इतना दुनिया में दुख, इतना कष्ट, कुछ कीजिए प्लीज़, आप किसी को भेजिए या कुछ थोड़ा सा व्यवस्था कीजिए, थोड़ा संसार का जो चेहरा है वो थोड़ा ठीक हो, ये तो देखने लायक नहीं, बहुत कुरूप हो गया है। आधा घंटा वो पोप जो है अपनी गाथा सुनाता रहता है भगवान को। आधे घंटे बाद कहता है कि बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी पूरी बात सुनी, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, आपको कष्ट दिया उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, पर यह जरूरी था। पढ़ा लिखा व्यक्ति अपना दुख बता के यही बोलता है कि जरूरी था नहीं तो करता ना। बात फोन रख देता है तो वो पोप से पूछता है, वो पुजारी से पूछता है पोप कि भाई हमारा भी कोई बिल आया होगा। बिल तो आया है भाई, तो कोई बात नहीं, मेरा पीए है साथ में, ट्रेजरर भी है, जितने भी $1,000 बनते हैं हम कर देंगे। अरे नहीं 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 पुजारी ने कहा, हमारा 150 रुपये बिल आया है आपका। क्या बात करते हो, उसने कहा, पोप ने कहा, 150 रुपये? आधा घंटा मैंने भगवान से बात की और सिर्फ 150 रुपये बिल? उसने कहा, पोप जी महाराज, हमारे यहाँ से लोकल कॉल है, हमारे देश में भगवान दूर नहीं बसते हैं, हमारे देश में यहाँ से तो स्थानीय कॉल है, एक अभी लगाई और अभी लग गई, क्योंकि इस भूमि पर इतने श्रेष्ठ संत हुए हैं, एक से बढ़कर एक अवतार हुए हैं, कि वास्तव में ही जिसको यदि ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चलना हो तो शायद इससे बढ़कर कोई भूमि नहीं है। प्राप्ति करके ही और चला जाए शायद ठीक है, प्राप्ति के लिए तो इससे श्रेष्ठ कोई जगह नहीं है। तो जो चौथा अभिन्न अंग है जिस पर मैं विचार करना चाहता, जिसके कारण हमने आपको ये कथा बताई, सत्संग हो गया, समर्पण हो गया, समर्पण से प्रज्ञा आई, परंतु समता के लिए एक बहुत चीज आवश्यक होती है, वो है प्रार्थना। क्योंकि प्रार्थना अहंकार रहित व्यक्ति ही कर सकता है, परम ज्ञानी जो है प्रार्थना करता है, जो अज्ञानी है वो तो अधिकार जमाता है ना। जो ईश्वर के मार्ग पर आगे चलता है वो प्रार्थना करने की कला सीख जाता है, ये कला होती है। एक यंग लड़का है और एक दिन उसने मुझे ईमेल की, मुझे किशोर अवस्था में है, 22 साल का है, मुश्किल से बहुत अच्छा, बहुत ही मेहनती, बड़ी विकट परिस्थितियों से अपने जीवन को संवार रहा है। तो उसने 4 पंक्तियां लिखी बस ईमेल में, और कुछ नहीं था, जो मुझे इतनी अच्छी लगी कि मुझे लगा कि ये प्रार्थना का सार है, शायद इससे श्रेष्ठ प्रार्थना हो नहीं सकती। क्या लिखा? सिद्धे राते रखी मालका, चाहे दुनिया ते लख हनेरा होवे, मेहर करी जिथे मेरा सिर चुके, मेरे मालका ओ दर बस तेरा होवे। उसने कहा कि सीधे राह पे रखना है मालिक, चाहे दुनिया में लाख अंधेरा हो, बस आपसे इतनी रहमत मांगता हूं कि कभी भी मेरा सिर झुके, जहां भी मेरा सिर झुके, जिस दर पर भी मेरा सिर झुके, वो आपका ही हो। और यही प्रार्थना का सार होता है कि आपका इतना दृढ़ विश्वास हो ईश्वर में, ईश्वर की सत्ता में, उस दिव्य सत्ता में, कि पहला एक से कभी दूसरे पे ना जाएं, ऐसी कमी ना, एक से दूसरे पर तब जाएंगे जब एक जगह से आपको कमी लगेगी, कि जहां प्रज्ञा से एक बार पांव डाल लिया फिर वो जैसे अंगद का पांव था लंका की सभा में, वैसा हो फिर, कि एक डाल लिया तो डाल लिया, अब नहीं उठाएंगे। और इतना साहस हो, इतना बल हो कि हम निर्बल का साथ दे सकें, और इतना बल हो कि हम दर्द को दर्द तक ही सीमित रखें, उसको दुख ना बनाएं, और इतना बल हो कि यदि दुख आ भी जाए, यदि दुख की अनुभूति हो भी, तो हम ये संकल्प लें कि मैं मेरे रहते किसी दूसरे को ऐसा दुख ना होने दूंगा। जैसा कि एक माँ का होता है अपनी संतान के प्रति, कि जो दुख मुझे हुआ मेरी संतान को ना हो, पिता का कई बार विपरीत होता है। पिता कहता है मैंने इतने कष्ट से सब कुछ अर्जित किया, इसको भी कमाने दो, इसको पता चलनी चाहिए कीमत हर चीज की, हाथ में रख के मत दो सब कुछ। माँ कहती है जो मुझे कष्ट हुआ वो मेरी संतान को कष्ट ना हो। वो वात्सल्य भाव जब आ जाए प्रार्थना से, उस दिन आपकी प्रार्थना सफल हो गई। तब तक तो व्यापार रहता है। जो उल्फत में तुम्हारी खो गया है, उसी खोए हुए को कुछ मिला है। ना बुत खाने ना काबे में मिला है, मगर टूटे हुए दिल में मिला है। अदम बनकर कहीं तू छुप गया है, कहीं तू हस्त बनकर आ गया है। नहीं है तू तो फिर इनकार कैसा, नफी भी तेरे होने का पता है। मैं जिसको कह रहा हूं अपनी हस्ती, मैं जिसको कह रहा हूं अपनी हस्ती, अगर वो तू नहीं तो और क्या है। नहीं आया ख्यालों में अगर तू, तो फिर मैं कैसे समझा तू खुदा है। हैरत की एक दुनिया हो, तुम एक गोरख धंधा हो। इसी के साथ यह प्रकरण नहीं समाप्त होता है।